ये रेडियो नेपाल है। अब सीमा शर्मा से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। नवनियुक्त प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह को चीन के प्रधानमंत्री ली छियांग की बधाई। द्विपक्षीय सहयोग और साझेदारी को मजबूत करने की जताई है प्रतिबद्धता। पूर्व प्रधानमंत्री एवं नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली और पूर्व गृहमंत्री एवं कांग्रेस नेता रमेश लेखक की गिरफ्तारी के विरूद्व एमाले ने किए विरोध प्रदर्शन। तत्काल रिहा करने की एमाले ने की है मांग। गिरफ्तारी प्रतिशोध नहीं बल्कि न्याय की शुरूआत है, गृहमंत्री सुदन गुरुंग का कथन। और भारत के जम्मू कश्मीर में हिमस्खलन से 7 लोगों की हुई मृत्यु। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ को धन्यवाद दिया है। सोशल मीडिया के माध्यम से उन्होंने शुभकामनाओं के लिए आभार व्यक्त करते हुए सहयोग को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने भारत के साथ बहुआयामी संबंधों को जनस्मृति के लिए मजबूत करने की इच्छा जताई। पाकिस्तान के साथ भी मैत्रीपूर्ण और पड़ोसी भावना के अनुरूप संबंधों को सुदृढ़ करने की बात कही। बता दें कि प्रधानमंत्री शाह को कल शपथ ग्रहण के तुरंत बाद भारत और पाकिस्तान की ओर से बधाई और शुभकामनाएं ज्ञापित की गई थी। चीन के प्रधानमंत्री ली छियांग ने नेपाल के प्रधानमंत्री बने बालेन्द्र शाह को आज बधाई देते हुए द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। संदेश में उन्होंने नेपाल की सुशासन पहल में समर्थन और उनकी स्वतंत्रता, संप्रभुता और भौगोलिक अखंडता के प्रति सहयोग जारी रखने की बात कही। उन्होंने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को आगे बढ़ाने और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग विस्तार करने की इच्छा जताई है। साथ ही चीन नेपाल रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और 71 वर्षों से पंचशील सिद्धांत पर आधारित संबंधों का उल्लेख किया। नेकपा एमाले ने पूर्व प्रधानमंत्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली और नेपाली कांग्रेस नेता एवं पूर्व गृहमंत्री रमेश लेखक की तत्काल रिहाई की मांग की है। ललितपुर के च्यासल स्थित केंद्रीय कार्यालय में हुई सचिवालय बैठक ने यह निर्णय लिया। महासचिव शंकर पोखरेल ने जानकारी दी कि दोनों नेताओं की गिरफ्तारी की निंदा की गई है और इसे लोकतंत्र और कानून के शासन के विरूद्व बताया गया है। बैठक ने जिंजी आंदोलन की निष्पक्ष जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के नेतृत्व में उच्च स्तरीय जांच आयोग बनाने की मांग की है। पूर्व न्यायाधीश गौरी बहादुर कार्की की अध्यक्षता वाले आयोग की सिफारिश के आधार पर आज सुबह ओली और लेखक को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के विरूद्व में एमाले ने देश भर में प्रदर्शन किया। काठमांडू के विभिन्न स्थानों पर तनाव की स्थिति रही। प्रदर्शन में शामिल 7 लोगों को सिंहदरबार के दक्षिण गेट से गिरफ्तार किया गया। घाटी में सुरक्षा के लिए बड़ी संख्या में पुलिस तैनात की गई है। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली को काठमांडू महाराजगंज स्थित त्रिवी शिक्षण अस्पताल में भर्ती किया गया है। 2 बार किडनी प्रत्यारोपण करा चुके ओली में मल्टीपल हेल्थ इश्यू के कारण जोखिम हो सकने के मद्देनजर ईसीजी मॉनिटर के जरिए हृदय की गति की निगरानी की जा रही है। ये जानकारी अस्पताल स्रोत ने दी है। वहीं पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक को गिरफ्तार कर पुलिस के 2 नंबर गढ़ महाराजगंज में रखा गया है। गृहमंत्री सुदन गुरुंग ने कहा है कि कानून से ऊपर कोई भी नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पिछले भाद्र 23 को हुए जेंजी आंदोलन की जांच के लिए गठित आयोग द्वारा दोषी ठहराए गए तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और तत्कालीन गृहमंत्री रमेश लेखक को जांच के लिए हिरासत में लेना प्रतिशोध नहीं है। मंत्री गुरुंग ने फेसबुक पर लिखा, कानून से ऊपर कोई नहीं है। हमने पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और पूर्व गृहमंत्री रमेश लेखक को हिरासत में लिया है। यह किसी के प्रति प्रतिशोध नहीं बल्कि केवल न्याय की शुरुआत है। उन्होंने यह भी विश्वास व्यक्त किया कि अब देश एक नई दिशा लेगा। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह के नेतृत्व में गठित सरकार की पहली मंत्रिपरिषद बैठक ने जेंजी आंदोलन की जांच के लिए पूर्व न्यायाधीश गौरी बहादुर कार्की की अध्यक्षता वाले आयोग की सिफारिशों को लागू करने का निर्णय लिया था। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री डॉ. विक्रम तिमल सिन्हा ने कर्मचारियों को जनता मुखी ढंग से कार्य करने का निर्देश दिया है। मंत्रालय में आज आयोजित बैठक में कामकाज की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि संचार मंत्रालय सरकार का चेहरा होने के साथ नागरिकों से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है, इसलिए ऐसे कार्य किए जाएं जिनसे जनता को तत्काल लाभ और परिणाम मिल सके। उन्होंने नवगठित सरकार की भावना के अनुरूप सेवा प्रवाह को सरल, तेज और प्रभावी बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सेवा वितरण में किसी भी प्रकार की ढिलाई या विवाद की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। मंत्री तिमल सिन्हा ने यह भी निर्देश दिया कि सेवाग्राही को समस्या महसूस होने से पहले ही उसका समाधान किया जाए और जन भावनाओं को सम्मान करते हुए देश को सही दिशा में आगे बढ़ाने में सभी कर्मचारी जिम्मेदारी निभाएं। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं अब कुछ देर विज्ञापन।
नेपाल टेलीकॉम को 4G भिडियो कल गर्दा नो बोर जी नेपाल टेलीकॉम को 4G
सबैको यो विश्वास हो नि नेपाल टेलिकमको 4G
गेम खेल्दा नि टेन्सन नजी नेपाल टेलिकमको 4G आफ्नो भन्ने आफ्नै हो जी नेपाल टेलिकमको 4G
नेपाल टेलिकम राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने नेपाल के नवनियुक्त विदेश मंत्री शिशिर खनाल को बधाई दी है। उन्होंने दोनों देशों के बीच हुए महत्वपूर्ण समझौतों के कार्यान्वयन और दीर्घकालीन मैत्री पर आधारित सहयोग को और आगे बढ़ाने की इच्छा व्यक्त की। नेपाली कांग्रेस की ओर से प्रतिनिधि सभा चुनाव में प्रत्यक्ष और समानुपातिक प्रणाली से निर्वाचित और राष्ट्रीय सभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए अभिमुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। पार्टी मुख्यालय शानेपा में आज संसदीय सचेतना के लिए यह कार्यक्रम किया गया। यह जानकारी कार्यवाहक मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद दुलाल ने दी। बता दें कि प्रतिनिधि सभा चुनाव में कांग्रेस से प्रत्यक्ष में 18, समानुपातिक में 20 और राष्ट्रीय सभा में 9 सदस्य से निर्वाचित हुए हैं। भारत सरकार ने नेपाल सरकार को 1 टन क्षमता वाले 19 वाहन हस्तांतरित किए हैं। वीरगंज स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास के वाणिज्य दूत मनीष कुमार दास ने आईसीपी स्थित वीरगंज कस्टम परिसर में परसा के सहायक प्रमुख जिला अधिकारी सुमन कुमार कार्की को ये 19 वाहन सौंपे। दूतावास के अनुसार नेपाल सरकार के अनुरोध पर ये वाहन सहयोग के रूप में प्रदान किए गए हैं। परसा के सहायक प्रजिया कार्की ने वाहन उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए बताया कि इन वाहनों को गृह मंत्रालय को भेज दिया गया है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बड़ा हादसा हो गया है। गांदरबल जिले में हिमस्खलन की चपेट में आने वाले 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हो गए हैं। घटना के बाद श्रीनगर कारगिल हाईवे को बंद कर दिया गया है। वहीं यह पूरा हादसा जोजिला दर्रे के पास हुआ है। फिलहाल स्थानीय लोगों के साथ मिलकर पुलिस और आपदा प्रबंध के जवान रेस्क्यू अभियान में जुटे हैं। अधिकारियों ने बताया कि शुक्रवार को जोजिला दर्रे पर हिमस्खलन से एक यात्री वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने से कम 7 लोगों की मौत हो गई और 5 अन्य घायल हो गए। वाहन हिमस्खलन की चपेट में आ गया था, जिसके परिणाम स्वरूप 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना में 5 अन्य घायल हुए हैं। हिमस्खलन के तुरंत बाद सीमा सड़क संगठन BRO और पुलिस कर्मियों सहित बचाव दल घटना स्थल पर पहुंचे। अधिकारियों ने बताया कि घायलों को निकालने और मलबे से शवों को निकालने के लिए अभियान शुरू किया गया है। लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने 1 तारीख को कहा कि उन्होंने कारगिल के उपायुक्त और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को घटनास्थल का दौरा करने और राहत एवं बचाव अभियान शुरू करने का निर्देश दिया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने एक्सको हुई मौतों की पुष्टि की है। उन्होंने लिखा, जोरजिला दर्रे पर हिमस्खलन की चपेट में आने से 7 लोगों की दुखद मौत और 5 लोगों के घायल होने की खबर सुनकर गहरा सदमा लगा है। मेरी हार्दिक संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ है। घायलों को हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12 से 14 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 21.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11.9 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नवनियुक्त प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह को चीन के प्रधानमंत्री ली छियांग की बधाई। द्विपक्षीय सहयोग और साझेदारी को मजबूत करने की जताई है प्रतिबद्धता। पूर्व प्रधानमंत्री एवं नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली और पूर्व गृह मंत्री एवं कांग्रेस नेता रमेश लेखक की गिरफ्तारी के विरुद्ध एमाले ने किए विरोध प्रदर्शन। तत्काल रिहा करने की एमाले ने की है मांग। गिरफ्तारी प्रतिशोध नहीं बल्कि न्याय की शुरुआत है, गृहमंत्री सुदन गुरुंग का कथन। और भारत के जम्मू कश्मीर में हिमस्खलन में 7 लोगों की हुई मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि।